शिव पुराण के अनुसार गणपति जी के प्राकट्य की कथा इस प्रकार है। एक समय भगवती पार्वती जी भगवान शंकर के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर रहा करती थी। महेश्वर इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने भगवती की सेवा के लिए अपने दो प्रमुख गण नंदी और भृंगी को छोड़ रखा था। एक समय द्वार पर नंदी खड़ा था। भगवती अंदर स्नान घर में जल क्रीड़ा कर रही थी। इतने में भगवान शिव पधारे। द्वार पर नंदी ने प्रभु को रोका और कहा, आप अंदर ना जाएं। भगवती इस समय स्नान कर रही हैं। परंतु महेश्वर नंदी की उपेक्षा करते हुए अंदर घुस गए। उन्हें देखकर भगवती लज्जित होकर संकोच पूर्वक खड़ी हो गई। भगवती ने सोचा कि यद्यपि नंदी और भृंगी ये दोनों गण उनकी सेवा के लिए हैं, फिर भी वो दोनों भगवान शंकर के अधीन हैं। क्यों ना मैं अपने लिए एक नए गण की रचना करूं? ऐसा विचार करके पार्वती जी ने अपने योग बल से एक गण की रचना करी जो सभी गुणों से युक्त था। वो विशाल शरीरधारी, परम शोभायमान और महान पराक्रमी था। भगवती ने उसे सुंदर वस्त्रों से और आभूषणों से सजाया तथा उसे वरदान देते हुए कहा,
तुम मेरे पुत्र हो, तुमसे प्यारा मुझे और कोई दूसरा नहीं है।
अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी इस पुरुष ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाते हुए कहा,
माता आज्ञा दीजिए, मैं प्राण रहते आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा।
माता पार्वती बोली,
तुम मेरे पुत्र हो, मेरे द्वारपाल बन जाओ, बिना आज्ञा के किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना।
इतना कहकर भगवती उमा ने उसे एक दंड देकर द्वार पर खड़ा कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर महेश्वर पधारे। माता फिर स्नान कर रही थी, परंतु अब द्वार पर गणपति जी विद्यमान थे। उन्होंने शिव जी का रास्ता रोककर कहा,
माता अंदर स्नान कर रही है, आप बिना उनकी आज्ञा से अंदर नहीं जा सकते।
शिव जी ने उस बालक को बहुत समझाया और कहा,
बालक मैं शिव हूँ, मेरा रास्ता मत रोक।
मातृभक्त गणपति बोले, प्रभु आप चाहे जो भी हो, परंतु माता की आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकते।
चकित होकर शिव जी बोले,
मूर्ख बालक, मैं उनका पति हूँ और तुम मुझे अपने ही घर में जाने से रोक रहे हो।
परंतु गणेश जी ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इस पर भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस मूर्ख बालक को समझाओ कि मेरा रास्ता न रोके, और यदि समझाने से न माने तो उसे जबरदस्ती वहां से हटा दो। प्रभु की आज्ञा मानकर गणों ने गणेश जी से आग्रह किया कि वो द्वार से हट जाएं, परंतु बिना पार्वती की आज्ञा के गणेश जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और युद्ध करने को तैयार हो गए। शिव गणों ने आकर शिव जी को सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे अनुमति पाकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। परंतु उस भीषण युद्ध में एक तरफ तो अकेले गणेश और दूसरी तरफ शिव जी के अनेकों गण और पार्षद टिक ना पाए। तब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र का मस्तक कटा देखकर जगत जननी मां पार्वती पुत्र शोक से विवहल हो गई। उन्होंने अपनी समस्त महाशक्तियों को उत्पन्न करके आज्ञा दी कि विश्व में प्रलय मचा दो, जो सामने आए उसे मार डालो अथवा खा जाओ। सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, यक्ष, किन्नर, असुर आदि सब ने नारद जी से प्रार्थना की कि भगवती पार्वती को शांत करे। तब नारद जी की सलाह से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब देवताओं और ऋषि गणों को अपने सामने सिर झुकाए खड़ा देख भगवती शांत होते हुए बोली,
यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए
और आप लोगों के बीच पूजनीय हो जाए तथा उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान किया जाए, तभी तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो सकती है।
भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी सोता हुआ मिले उसका मस्तक काट कर ले आओ। आज्ञा का पालन करते हुए शिवगण उत्तर दिशा की ओर गए और पहला सोता हुआ प्राणी उन्हें एक दंत वाला हाथी दिखा। वो उस गज का मस्तक लेकर आ गए। महेश्वर ने उस गज का मस्तक उस मृत बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी योग माया से जीवित कर दिया। उस हाथी के मस्तक वाले लाल रंग के शरीर वाले बालक को माता पार्वती ने अपनी गोद में बिठाते हुए ये वरदान दिया।
हे गजानन, तेरे मुख पर सिंदूर लगा है, इसलिए जो भी सिंदूर गंध पुष्प आदि से तुम्हारी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, उनके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। तुम विघ्नेश्वर कहलाओगे, सभी देवताओं में तुम्हारी पूजा प्रथम होगी।